राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदगुरये नमः जुगादगुरये नमः सद्गुरये नमः श्रीगुरुदेवये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कण कण में व्याप्त सर्वंत्र जामिनी प्रभु पिता परमात्मा के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए सर्वकाल वंद्य ब्रह्मलीन वेदांत केसरी श्री स्वामी निर्मल जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। अनंत श्री विभूषित परमवीत राग परम पूज्यपाद विरक्त श्रोमणी निर्मल पीठाधीश्वर श्री 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 महंत जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय स्वामी निर्मल चेतन जी महाराज तथा उपस्थित संत वृंद भक्त वृंद सबका अभिनंदन करते हैं। प्रभु परमात्मा भगवान की कृपा हो रही है जो हमारे को अमूल्य श्वासों की पूंजी प्राप्त हुई है उस पूंजी को सफल करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महापुरुषों की पावन तपस्थली पर बैठ कर के आध्यात्मिक चिंतन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो भी संसार में आया है प्राणी मात्र वह सुख चाहता है और दुख की निवृत्ति चाहता है, इसलिए हरेक प्राणी सुख की तलाश में अनेक प्रकार के कर्म करता है। उस कर्म का प्रयोजन मानता है कि सुख की प्राप्ति। कर्म की फिलॉसफी को ना जान करके केवल सुख फल चाहता है, पुण्य कर्म से भी सुख चाहता है और पाप कर्म से भी सुख ही चाहता है। ज़्यादा सुख की तलाश में ही पाप भी कर लेता है कई बार। तो सुख कैसा चाहता है, जिस सुख की कभी भी निवृत्ति ना हो, सुख बना ही रहे। तो इसलिए कहते हैं कि यदि सुख चाहिए तो सुख स्वरूप प्रभु प्रताप परमात्मा ब्रह्म का चिंतन करने से सदैव सुख मिलता है, क्योंकि सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकि सरणी पाइये। संसार की जितने सुख हैं वो तो क्षणक मात्र हैं, और जो सुखों का घर है, जो आनंद का घर है, जो रस का घर है, वो ब्रह्म है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो भूमा है, जो व्यापक है, वह सुख स्वरूप है। अल्प पदार्थ, दृश्य पदार्थ, परिच्छन्न पदार्थ में सुख नहीं है। सुख का आभास मात्र है, सुख की भ्रांति मात्र है, सुख नहीं है। और संसार में इच्छा रख करके जो कुछ भी हम करते हैं, एक इच्छा पूर्ण होती है फिर दूसरी तत्काल ही उठ जाती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। सारी हमारी इच्छाओं की पूर्ति कब होती है? आत्मवेत्त होने पर होती है। आत्मवेत्ता की कोई इच्छा नहीं, यानी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। एक और वचन कहते हैं पावन वाणी में गुरुदेव जी महाराज, कहते हैं कि इच्छा पूर्त सर्व सुख दाता हर, जाकर वस है काम धेना। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कौन है? जैसी भूख तैसी का पूरक, सगल घटा का स्वामी। जिसको जिस पदार्थ की भी भूख हो, भूख जाने इच्छा हो, जैसी भूख तैसी का पूरक, उसको वैसी ही उसकी वासना उसकी इच्छा को पूर्ण करने वाला कौन है? सगल घटा का स्वामी, जो संपूर्ण परपंच का स्वामी है, बालक है, प्रभु है, व्यापक है, इच्छा पूरक, वो इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। कौन? हार जानी हरि। कैसे करता है? जाकर वास है काम धेना। जो काम धेनु है, हम जानते हैं कि काम धेनु जिसके पास होती है उसकी संसार की कोई भी कामना जो है उससे पूरी हो जाती है। के प्रभु के हाथ में भी काम धेनु है। कौन सी? भक्ति रूपी काम धेनु है उसके हाथ में, उसके अधीन है भक्ति रूपी काम धेनु। वो जिसको प्राप्त हो जाती है नाम रूपी काम धेनु, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि यदि सुख की इच्छा हो तो जो सुख स्वरूप है उसका चिंतन करना चाहिए। सतगुर पूरे सेविय दुखा का होए दास। जो पूर्ण प्रभु पिता परमात्मा है उसका स्मरण करने से संसार के दुखों की निवृत्ति होती है और सदीवी सुख की प्राप्ति होती है। तो यदि उसको छोड़ करके संसार का चिंतन करते हैं तो सुख को मांगे सबको, दुख न मांगे कोई। कोई भी संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जो कहता है कि मेरे को दुख मिले। सारे सुख चाहते हैं, तो कहते हैं सुख देने वाला है कौन? सब सुख दाता राम है, दूसर ना है न कोई, कोई भी नहीं है संसार में, सब सुख दाता राम है। जितने सुख आपको चाहिए मिल सकते हैं, एक ही ऐसा तत्व है, कौन है? राम। सब सुख दाता राम है, दूसर कोई है ही नहीं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, केवल सुख की बात नहीं है, दुख भी देने वाला कोई नहीं है। जो हमारे को दुख प्राप्त हो रहा है वो किसका है? हमारे कर्मों का फल है। दद्दा दोष न देव किसै, दोष कर्मा अपण्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। दूसरे को दोष मत दो कि इस व्यक्ति से, इस स्थान से, इस परिस्थिति से मेरे को दुख हुआ है, केवल अपने कर्मों का फल है। तो ये दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप जो मोक्ष है वो ब्रह्म का साक्षात्कार है। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर कोई भी दुख नहीं रहता। एक बिछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सक्तवार जमदूत। एक कौन सा दुख है? एक बिछोड़ा एक दुख भूख। हमारे को भूख का दुख है कि नहीं? भूख लगती है तो दुखी होते हैं, ये भी बहुत बड़ा दुख है। एक दुख सक्तवार जमदूत, एक जमदूत जब आते हैं पकड़ने लिए तो वो भी बहुत बड़ा दुख है। एक दुख रोग लगे तन धाए, एक जब रोग लग जाता है शरीर को वो भी दुख है। ये सारे दुख हैं कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन सा है? एक विछोड़ा। सबसे बड़ा दुख है विछोड़े का, वियोग का। बाकी दुख भी हैं लेकिन सबसे बड़ा है दुख विछोड़े का। लेकिन नाम जब प्राप्त हो जाता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है तो दुखों की निवृत्ति हो जाती है। कोई भी सबसे बड़े से बड़ा दुख भी जो है उसकी निवृत्ति होती है नाम के स्मरण करने से। कहते हैं गुरुदेव जी महाराज कि घोर दुखिंग अनक हत्यंग, घोर जो भयानक दुख है कितना भी बड़ा हो, अनक हत्यंग, किसी ने अनेक प्रकार की हत्याएं भी की हो, यानी ब्रह्म ज्ञानी की हत्या भी कर देते हैं लोग, कितना बड़ा भी हत्यारा हो। तो कहते हैं घोर दुखंग अनक हत्यंग जन्म दरिद्रंग, एक जन्म का नहीं जन्मांतरों का कोई दरिद्री हो, कंगाल हो, जन्म दरिद्रंग महाविख्यादंग, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी उपाधि जिसको लगी हो। महाविख्यादंग घोर दुखंग अनक हत्यंग जन्म दरिद्रंग महाविख्यादंग, मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ट भस्म क्रोध। जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी जो है बहुत ज़्यादा बड़े ढेर लकड़ियों को भस्म कर देती है ना, उस प्रकार बहुत बड़ा कोई घोर भयानक दुख हो, हत्या लगी हो, कुछ भी हो, तो मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, सारे ही नाम का स्मरण करने से मिट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। इसका मतलब है यदि हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं हो रही तो हमारे नाम जपने में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नाम का स्मरण नहीं हो रहा। तो कबीर जी महाराज हर रोज हमारे को तागीद करते हैं, हमारी प्रवृत्ति कराते हैं, संसार के दुखों को गिनाते हैं कि संसार में यदि अध्यास करोगे शरीर के साथ, विषयों के साथ, आसक्ति करोगे तो फिर दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। आज जो कबीर जी महाराज जी का पावन शब्द है गौड़ी कबीर जी, उसके अंदर कबीर जी महाराज कथन करते हैं, दे मुहार लगाम पहरावो सगल तजीन गगन दौर रावो। अपने विचार असवारी कीजै सहज कै पावड़ै पग धर डीजै रहाओ। चल रे बैकुंठ तुझ है ले तारो हिच है ता प्रेम कै चाबुक मारो। ये पावन शब्द कबीर जी महाराज जी का है। कबीर जी महाराज जी के पास उनका यश उनकी महिमा श्रवण करके एक दिन कोई राजा आ गया। उसने कहा कबीर जी महाराज जी को प्रार्थना की कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो पैदल जाना पड़ता है आपको, मैं आपको एक घोड़ा ले देता हूँ, तो आप जब भी कहीं जाना हो तो उस घोड़े के ऊपर असवार होकर के बाहर जाइए और जो आप धर्म प्रचार उपदेश करते हैं कीजिए। तो कबीर जी महाराज उस राजा को नमित बना करके तो कहते हैं कि हे राजन, हम तो पहले ही घोड़े के ऊपर ही असवार हैं, यदि आपको भी घोड़ा ऐसा चाहिए तो हम आपको भी दे देते हैं। वो घोड़ा जिस घोड़े के ऊपर हम असवार हैं वो ऐसा घोड़ा है कि ना कभी थकता है ना कभी किसी से हारता है। तो राजा कहने लगा कि ऐसा कौन सा घोड़ा है महाराज, आपके पास कोई घोड़ा तो दिखता नहीं है, मेरे को भी बतलाइए ऐसा कौन सा घोड़ा है। तो कबीर जी महाराज कहते हैं उस राजे को नमित बना करके हम लोगों को वैराग्य का उपदेश देते हैं कि कैसे हम संसार की यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंचने के लिए हमारे को कोई घोड़ा गाड़ी चाहिए तभी पहुंच सकते हैं। तो हमारी ये जो संसार में आने जाने की यात्रा है, संसार में तो किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए संसारिक गाड़ी घोड़े की ज़रूरत पड़ती है, पर जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है पारमार्थिक यात्रा है उसके लिए संसार की गाड़ी घोड़ा काम नहीं करता, वो भी तो एक यात्रा है। पहले भी एक दिन हमने निवेदन किया था कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तुम सारथी गेय, इस प्रकार का एक प्रकरण सुनाया था कि एक रथ है आत्मा रूपी रथ है, उस यात्रा का वहाँ पर उस पे भी यात्रा का ही निवेदन किया था। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक जो मंजिल है उस पर पहुँचने के लिए हमारे पास भी घोड़ा है एक। तो राजा ने कहा महाराज जी कौन सा घोड़ा है, तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि हमारे पास मन रूपी घोड़ा है, हम मन रूपी घोड़े के ऊपर असवार हुए हैं। तो घोड़ा जब होगा तो घोड़े को जो सामग्री होती ना असवारी करने की साथ में चाहिए, घोड़े के लगाम होती है, चाबुक होता है उसको मारने के लिए, उसकी रकाब होती है, असवारी का सामान चाहिए ना, केवल घोड़ा नहीं चाहिए। तो राजा कहता महाराज घोड़े के साथ में तो और भी सामान होता है, लगाम होती है, रकाब होती है, चाबुक होता है, काठी होती है डालने की, तभी हम घोड़े की असवारी कर सकते हैं नहीं तो गिर जाएंगे। तो आपके पास मान लेते हैं मन रूपी घोड़ा तो है, लेकिन बाकी सामग्री कहाँ है आपकी। कबीर जी कहते पूरी सामग्री है, बताते हैं आपको, केवल हमने घोड़ा ही थोड़ी रखा है, बाकी सामान भी है। तो कबीर जी महाराज कहते हैं दे मुहार लगाम पहरावो, जो हमारा मन रूपी घोड़ा है, मुहार मुहार कहते हैं जो ऊंट की नकेल होती है उसको मुहार कहते हैं, जो ऊंट को पहनी होती है, और जो घोड़े के मुख में दी होती है उसको लगाम कहते हैं। और लगाम दो होती है घोड़े के पहनी हुई, एक ढीली होती है एक कसी होती है, और ऊंट को जो नकेल पहनी होती है उसको मुहार कहते हैं। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि हमने मन रूपी घोड़े को लगाम दी हुई है, कौन सी है, जो कहते शरीर का अध्यास है ना, मोह है, उस मोह का जो दुश्मन है वैराग्य, हमने उस अध्यास को दूर करने के लिए क्या किया, जो वैराग्य धारण किया है ये हमने उस मान रूपी घोड़े को लगाम दी हुई है उसके मुंह में, यानी मान रूपी घोड़ा इधर उधर ना कहीं जाए, उसको कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि संसार के पदार्थों की तरफ मुंह मारता है, इधर उधर जाता है, और लगाम नहीं होती तो कंट्रोल भी नहीं होता, संसार की तरफ खींच के ले जाता है, विषयों की तरफ, इंद्रियाणि प्रमाथिनी, जो इंद्रियां हैं ये बहुत बलवान है, मन भी इनके साथ है, ये बलपूर्वक खींच के ले जाता है संसार की तरफ। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तुम सारथी गेया मनः परग्रहमेव तु, वहाँ पर मन को लगाम कहा था, यहाँ पर कहते मन घोड़ा है, तो लगाम कौन सी है, वैराग्य रूपी लगाम है। जब ये संसार के पदार्थों की तरफ खींचता है तो फिर क्या, वैराग्य रूपी लगाम से इसको हम कंट्रोल करते हैं, ये मन रूपी घोड़े को हमने वैराग्य रूपी लगाम दे रखी है। तो राजा कहने लगा कि महाराज लगाम तो दो होती हैं घोड़े को, एक ढीली होती है और एक कसी होती है। तो कहते हैं कबीर जी महाराज कि जो देह का अध्यास है या मोह है, उसको उसका जो वैरी है, अरी है, दुश्मन है, जो वैराग्य, ये एक लगाम है ढीली, थोड़ी ढीली लगाम है, जो हमने देह अध्यास को वैराग्य से दूर किया है ये एक लगाम है। और दूसरी कौन सी लगाम है, जो इस मन रूपी घोड़े को मोड़ करके हमने, तो इसकी जो लगन है, इसकी जो वृत्ति है वो ब्रह्म की तरफ लगाई है, ये खींची हुई लगाम है, इससे एक बार जब हमने उधर इसको जोड़ दिया तो इतने जोर से खींचा है कि अब ये कहीं इधर उधर नहीं भाग सकता। अथवा कहते हैं कि जो देह का, शरीर का, प्रपंच का जो अध्यास है, मोह है, उसका जो दुश्मन है विवेक, ये विवेक ही उस घोड़े को लगाम दी हुई है, क्योंकि विवेक से ही नित्य अनित्य का पता चलता है। मन रूपी घोड़े को हमने विवेक रूपी लगाम दी है, कि विवेक कहाँ से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है, तो विवेक रूपी लगाम है, और जो प्रभु पिता परमात्मा की तरफ वृत्ति है, ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म का चिंतन की तरफ वृत्ति है इस घोड़े की, वो इसको खींच के लगाम लगाई हुई है। तो कहते हैं कि और बताते हैं, विवेक अथवा वैराग्य रूपी लगाम है घोड़े को, और काठी कौन सी है उसके ऊपर, सगल तजीन, सारे संसार के पदार्थों की तरफ जो वृत्ति जाती है ना, उसका त्याग करना, संसार के मिथ्या पदार्थों का त्याग करना, यही काठी है मन रूपी घोड़े के ऊपर। संसार के विषय पदार्थों की जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं का त्याग करना, उसको उसकी तरफ से खींच करके श्रवण मनन निधिध्यासन में लगाना। जब तक संसार के पदार्थों के फल की आसक्ति नहीं छोड़ते, त्याग नहीं करते, तब तक इसकी वृत्ति अपने स्वरूप की तरफ नहीं जाती। प्राणी परम पुरख पग लागो, सोवत कहा मोह निद्रा में, कब हो सुचित होए जागो। इसलिए कहते हैं कि मोह रूपी निद्रा से जाग करके सावधान हो जाओ। जब सावधान होंगे तो फिर मन रूपी घोड़े के ऊपर असवार होते उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ आदमी यदि आलस में आ जाए तो घोड़ा कहीं भी उसको ले जा कर के गिर सकता है। कबीर जी कहते हैं हम सावधान हैं, विवेक वैराग्य रूपी दो लगाम हमने अच्छी तरह खींची हुई है और संसार के संपूर्ण पदार्थों का त्याग ये हमने काठी उसके ऊपर जीन डाली हुई है और उसको दौड़ाते कहाँ हैं हम, काठी पा करके उसके ऊपर लगाम पकड़ के उसको दौड़ाते हैं कहाँ। गगन यानी चिदाकाश रूपी मार्ग है, जो चिदाकाश है, जो ब्रह्म है, जो हमारा अंतरात्मा है, उस चेतन का जो चिंतन करते हैं ना, उस चेतन रूपी मार्ग में उसको दौड़ाते हैं। तो कहते हैं कि इस ऐसे घोड़े के ऊपर हमने असवारी की है। कहते हैं कि असवारी कौन सी है आपकी, असवारी का अर्थ क्या है, ऊपर बैठना, उस घोड़े के ऊपर बैठना। तो कहते हैं अध्यात्म, अध्यात्मक में आप क्या घटाएंगे, मन रूपी घोड़े के ऊपर आप स्थूल शरीर को लेकर के थोड़ी बैठेंगे। मन रूपी घोड़े की लगाम ही आध्यात्मिक है, काठी भी आध्यात्मिक है, उसका मार्ग भी आध्यात्मिक है, तो उसके ऊपर असवारी का अर्थ क्या है। कहते हैं असवारी का अर्थ है कि जो हम उसके द्वारा अपने स्वरूप का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करना ही असवारी है। अपने विचार असवारी की जय, अपने स्वरूप का विचार करना ही असवारी करते हैं। और कहते हैं कबीर जी महाराज जी को पूछा उसने राजा ने कि महाराज घोड़े के ऊपर रकाब कौन सी है, सहज के पावड़े पग धर डीजै। पावड़े का अर्थ है रकाब। कहते रकाबें कौन सी है, तो कबीर जी महाराज कहते हैं सहज। कबीर जी महाराज कहते हैं शांति रूपी रकाब है, धैर्य रूपी रकाब है। दो रकाबें होती है तो एक शांति रूपी रकाब है, दूसरी धैर्य रूपी रकाब है। जब सहज आ जाता है तो चंचलता दूर हो जाती है। संपूर्ण पदार्थों की जो वासनाएं से मन चंचल होता है, शांति रूपी जो रकाब है जब उसमें रखते हैं ना पांव, तो फिर कहते हैं चंचलता हमारी समाप्त हो गई है। और दूसरा है धैर्य रूपी रकाब, उसके ऊपर दूसरा पांव रखा है तो उन उसके रखने से व्यवहार में जो हमारे को संतोष नहीं होता, अब जब धैर्य आ गया है तो हमारे अंदर शांति और संतोष है। तो दो रकाबें हैं हमारे पास, शांति और धैर्य रूपी रकाब है, उसके ऊपर हमने पैर रखा हुआ है। कौन सा, चित्त और बुद्धि रूपी दो पैर रखे हुए हैं, शांति है और धैर्य है। बुद्धि धैर्य से युक्त है, चित्त में शांति है, दो पैर हैं चित्त और बुद्धि रूपी पैर, और दो रकाबे हैं शांति और धैर्य रूपी रकाब है। इस प्रकार का उपदेश कबीर जी महाराज देते हुए कहते हैं अपने मन को सावधान करके क्या कहते हैं, चल रे बैकुंठ तुझे लय तारो। उस राजा को कहते हैं कि मैं अपने इस मन रूपी घोड़े को इस प्रकार प्रेरणा करता हूँ सत्कार से कि यदि तेरे को बैकुंठ जाने की इच्छा है, जाना कहाँ है, मन रूपी घोड़े के ऊपर बैठ के कहीं जाना है कि नहीं, घोड़ा भी बता दिया, लगाम भी बता दी, काठी भी बता दी और रकाब भी, तो असवारी भी बता दी आपने, बिल्कुल तैयार हैं आप, असवार हैं, तो पहुँचेंगे कहाँ, बैकुंठ में, कौन सा बैकुंठ, बैकुंठ कोई पुरी नहीं है, बैकुंठ की कई प्रकार की व्याख्या करते हैं पावन वाणी में गुरुदेव। एक तो कहते हैं बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, वही बैकुंठ है, यहाँ संत वासा, जिस पद पर जिस अवस्था पर संत का निवास है बैकुंठ नगर, या जिस बाहर की बात करेंगे तो जिस नगर में किसी महापुरुष का निवास है, जिस घर में, जिस कमरे में, जिस आश्रम में, कहीं में लगा लो, बाहर का अर्थ है कि वो भी बैकुंठ है। क्यों, बैकुंठ का अर्थ क्या है, बै का अर्थ है बिना, कुंठ का अर्थ है वहाँ कुंठा नहीं है, किसी प्रकार की रोक नहीं, प्रतिबंध नहीं है, बैकुंठ है, बिना कुंठित है उसकी, वहाँ पर उसको रोकने वाला कोई नहीं है, किसी प्रकार का यानी प्रतिबंध नहीं है, कुंठिता से रहित है। तो कहते हैं कि बैकुंठ की परिभाषा करते हैं कि बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, ये तो बाहर की बात हुई, लेकिन मन रूपी घोड़े के ऊपर असवार होकर के कौन से बैकुंठ में जाना है, जो नगर है जिस पे संत रहते हैं उस नगर रूपी बैकुंठ में तो हम स्थूल शरीर से भी जा सकते हैं, जाते हैं कि नहीं, हर रोज जाते हैं आप, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा की यहाँ बात चलती है कि इस मन रूपी घोड़े के द्वारा हमने कहाँ जाना है, बैकुंठ में, कौन सा बैकुंठ, जहाँ संत वासा, यहाँ पर संतों का वास का अर्थ है निवास, टिकाओ, जहाँ पर संत टिके हुए हैं, तो संत कहाँ पर टिके हुए हैं, जब निवास करेंगे संत का तो आप कहेंगे तो कमरे में रहते हैं, कमरे में संत नहीं रहते हैं, कमरे में उनका शरीर रहता है, नगर में संत रहते नहीं हैं, शरीर रहता है, उनका निवास कहाँ है, उनका निवास कहाँ है, उनका निवास इस उस स्थान पे है जहाँ पर किसी की गमता नहीं है, कोई पहुँच नहीं सकता, वहाँ पर संत निवास करते हैं। वो कहाँ निवास करते हैं, ब्रह्म में, ब्रह्म के अंदर उनका निवास है, तो यहाँ संत का निवास है, यानी अपने स्वरूप में स्थिति है ना संत की, वही बैकुंठ है, वहाँ पर किसी प्रकार की कुंठता नहीं है, कोई वहाँ पर बंधन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, दुख नहीं है, बिछोड़ा नहीं है, कौन सा, बेगम पुरा शहर को नाओ, दुख अंधोह नहीं तह ठाओ, ना तस्वीस खराज न माल, खौफ न खता, खौफ न खता न तरस जवाल, वहाँ पर रहते हैं। इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, जा एक और परिभाषा करते हैं, साध संत बैकुंठ आहे, इस मन रूपी घोड़े के ऊपर असवार होकर के तो कहाँ जाना है, साध संगत बैकुंठ है, जो सत्संग रूपी बैकुंठ है उसमें जाना है, ये सत्संग रूपी बैकुंठ, वो भी कल हमने निवेदन किया था कि बाहर वाला भी सत्संग है, लेकिन इस सत्संग में शरीर रूपी घोड़ा है हमारे पास, मन रूपी घोड़े के साथ हमने सत्संग रूपी वैकुंठ में जाना है, वो कौन सा है? तो सत का अर्थ है त्रिकाल, त्रिकाल अबाध, जो जिसका कभी भी नाश नहीं होता, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जिसको पंडित विद्वान लोग अनेक प्रकार से जिसका कथन करते हैं ऐसा सत्य, तो उस सत्य के साथ संग यानी अभेद, उस सत्य के साथ ऐक्य होना, ये कहते हैं वैकुंठ है। तो मन रूपी घोड़े के द्वारा हमने वहाँ पर पहुँचना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही हमारी बंधन और मोक्ष का कारण है। तो वैकुंठ का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति है वैकुंठ का अर्थ। मुक्ति कैसी? निरंकुश मुक्ति जिसको बोलते हैं, निरंकुश मुक्ति कई प्रकार की होती है कि नहीं? सालुक्य है, साजुज्य है, सामीप है, ये सब मुक्तियां है कि नहीं? लेकिन सलोक सामीप्य साजुज्य ये जो मुक्तियां हैं ये निरंकुश नहीं है, इनके ऊपर अंकुश है। ये मुक्ति कैवल्य मोक्ष नहीं है, निरंकुश मुक्ति नहीं है। तो निरंकुश मुक्ति है कैवल्य मोक्ष, यानी अपने स्वरूप में अभेद होना। जो सलोक समीप सामीप्य साजुज्य मुक्तियां हैं वो अपने इष्ट के पास जाने वाली है, जिस इष्ट का आप ध्यान करते पूजन करते उसके लोक में पहुंच जाना, उसके पास में चले जाना, उसका स्वरूप हो जाना, उसके जैसी ऐश्वर्य मिल जानी, यही होगा ना। लेकिन वो जो आपका इष्ट लोग है उसका भी तो एक दिन परले है, कहीं ना कहीं उसका आपने संकल्प उसको कल्पित किया है ना कि ये पुरी है। तो शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निःचल को थाव ना है। संसार में जो कुछ तीन भवनों में है ना वो सब काल के अधीन है, इसलिए निरंकुश मुक्ति नहीं है। वैकुंठ का अर्थ है निरंकुश मुक्ति। तो कबीर जी महाराज कहते हैं अपने मन को सावधान करते हैं कि चल रहे वैकुंठ तुझे लै तारो, तेरे को मैं संसार सागर से तार देता हूँ, पार कर देता हूँ, वैकुंठ में तेरे को ले चलता हूँ। अपने मन को कहते हैं जब खींच लिया है ना उस घोड़े को, लगाम वैराग्य विवेक रूपी लगाम, संसार के पदार्थों का त्याग रूपी काठी डाली है उसके ऊपर, और शांति और धैर्य रूपी रकाब में बुद्धि और चित्त रूपी पैर रखे हैं, अब उसको ले जाना चाहते हैं वैकुंठ यानी मुक्ति यानी अपने स्वरूप की तरफ। उसकी यात्रा की यहाँ पर समाप्ति है, विचार है ना, असवारी कौन सी की है? विचार। तो विचार से क्या होता है? अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते, विचार रूपी असवारी का फल क्या है? अविचारेण कृतो बंधा, संसारक जो बंधन है ना हमारे को पड़े हुए, जन्म मरण का है, बिछोड़े का है, ये जितने बंधन हैं अविचार कृतः, केवल अविचार यानी अविवेक से हैं। विचारेण निवर्तते, विचार से सभी बंधनों की निवृत्ति होती है। तो कबीर जी महाराज ने कहा था रहाओ की पंक्ति में कि अपने विचार असवारी की जय। हमने मान रूपी घोड़े के ऊपर असवारी कौन सी की है? विचार रूपी असवारी। तो विचार का फल क्या है? बंधन की निवृत्ति। तो जब बंधन की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर क्या है? बंधन की निवृत्ति ही मुक्ति है। वैसे वास्तव में ना बंधन है ना मुक्त है, परंतु मान्यता है हमारी कि हम बंधन में हैं, यानी प्राप्त की प्राप्ति है। जो बंधन हमारे को प्रतीत होता है ना विचार करने से, वो जो प्रतीति है, जो भ्रांति है, उसकी निवृत्ति होती है। बंधन यदि पड़ा हो तो उसको आप निवृत्त नहीं कर सकते। यदि वास्तव में हम बंधे हों तो उसकी निवृत्ति हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे को बंधन की जो भ्रांति है, वो भ्रांति विचार करने से निवृत्त हो जाती है। जब हम चिंतन करते हैं, देह अध्यास की निवृत्ति होती है, तो देह अध्यास ही बंधन है। जो उपाधि है यही बंधन है। कैसे? जैसे सूर्य का प्रतिबिंब है, वो जब पानी में पड़ता है, घड़े में पानी है, तो जब तक घड़े का पानी इधर उधर जाता हिलता है, तो सूर्य का प्रतिबिंब है वो भी हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी वो उस बंधन में है कि नहीं, उसके इर्द गिर्द बंधन है घड़े का। तो जब आकाश का प्रतिबिंब भी पड़ता है, उसको हम कहते हैं घटाकाश, तो वो बंधन में हो गया कि नहीं आकाश, उसको बांध लिया घड़े ने। तो इसलिए, लेकिन आकाश को ऐसी भ्रांति थोड़ा है, उसको भ्रांति हो कि मैं बंधन में पड़ा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, घड़े को तोड़ना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं करना। कहते हैं इसी प्रकार हमारा जो बंधन का कारण है वो क्या है, अध्यास, भ्रांति। बंधन हमारा जो है ना, उसका कारण, बंधन की प्रतीति जो हो रही है, वो देह अध्यास के कारण, परपंच के अध्यास के कारण, इंद्रियों के अध्यास के कारण। जब भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है तो फिर बंधन नहीं होता। ये कहते हैं चल रहे बैकुंठ तुझे लैचारो, हे मान रूपी घोड़े तू चल, तेरे को मैं संसार सागर से तार के कहाँ ले जाता हूँ। बैकुंठ यानी तेरे स्वरूप की तरफ। अपने मन को सावधान करके जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, तो फिर क्या होता है, एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है मन को, मम्मा मनस्यो काज है मन साध्य सिद्ध होए, मन ही मनस्यो कहे कबीरा, मानसा मिलया न कोए। मन के साथ ही हमारा कार्य है, यानी मन को जब हम बार बार अभ्यास और वैराग्य से संयम करते हैं। अर्जुन ने पूछा था ना कि भगवान ये मन नहीं वश में आता, तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से आता है। तो कबीर जी महाराज भी कहते हैं कि हमने वैराग्य रूपी लगाम से खींचा है इसको, देवहार लगाम पहरावो, हमने वैराग्य रूपी लगाम से खींचा है और फिर स्वरूप का चिंतन रूपी अभ्यास किया है, देह अध्यास के त्याग का अभ्यास किया है। अभ्यास और वैराग्य से जब हम अपने मन को बार बार लगाते हैं, तो जो मन बंधन मानता था ना, अपने आप को नया मानता था, अलग मानता था, तो उसका फल क्या मिला, अब मन उलट सनातन हुआ। तब जान्या जब जीवत मुआ, तो जीवत मुआ यानी देह अध्यास की निवृत्ति हो गई, देह अध्यास की समाप्ति हो गई, तो जीवत मुआ यानी जीवन मुक्त हो गया, सनातन हो गया। सनातन का अर्थ है जो अनादि है, अनंत है। नवीन किस लिए मानता था, नवीन इसलिए मानता था कि ईश्वर से, ब्रह्म से अपना भेद मान करके, मन के साथ जब हमारा अध्यास होता है तो हम अपने आप को अलग मानते हैं, जीव मानते हैं। तो जीवत मुआ का अर्थ है जीवपना समाप्त हो गया। तब जानिया, जब हमारा जीव भाव समाप्त हुआ तब जानिया। क्या जानिया? सनातन हुआ। अब समझ में आया, अब मन, अब समझ में आया कब? जीवत मुआ, जिस समय देह अध्यास की निवृत्ति हुई, जीवत भाव समाप्त हो गया, अब जीवपना नहीं रहा, ब्रह्म हो गए। पहले अपने आप को अलग मानते थे ना, तो कहते अब मन उलट करके, जब उलट, कैसे उलटेगा मन? जिस तरफ जा रहा है उधर से उल्टा, तो अपने आप तो उलटेगा नहीं। घोड़ा आपका जा रहा है तो उसको दूसरी तरफ खींचना होगा, तो लगाम चाहिए। तो मन रूपी घोड़े को वैराग, विवेक और वैराग्य रूपी लगाम से खींचा, तो आपने स्वरूप की तरफ चिंतन किया। कैसा? कि मन तू ज्योत स्वरूप है। इस प्रकार मन का अर्थ है जीव। जीव को सावधान करते हैं कि तू कैसा है, ज्योति स्वरूप है, यानी प्रकाश स्वरूप है। तो अपना मूल पहचान, जो तेरा मूल है कौन? ज्योति, प्रकाश, सच्चित आनंद स्वरूप, उसको पहचान। ऐसे मन को बार बार, मन को हमने सावधान किया, अपनी उसकी जो वृत्ति है संसार की तरफ से खींच करके, तो उसको स्वरूप की तरफ जब लगाया, अब मन उलट सनातन हुआ। अब उलट करके सनातन यानी अपना स्वरूप हो गया है। अब जब दौड़ता था संसार की तरफ, विषयों की तरफ, उधर नहीं जाता। माई मैं धन पायो हर नाम, कहते हैं पावन गुरुदेव वाणी में कि माई मैं धन पायो हर नाम। हे भाई, अब मेरे को नाम रूपी धन मिल गया है। संसार की दौलत ऐश्वर्य से मन दुखी था, अब नाम मेरे को प्राप्त हो गया है। तो नाम का अर्थ क्या है? नामी। नाम तो झूठा है। नाम से केवल नाम नहीं लेना, नाम और रूप दोनों झूठे हैं। नाम से अर्थ है नामी मिल गया है, मैं नामी में अभेद हो गया हूँ। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं माई मैं धन पायो हर नाम, अब मेरे को नामी मिल गया है। जब तक नामी नहीं मिला था तब तक मेरा मन अपने आप को नवीन मानता था। मन मेरो धावन ते छूट्यो, कर बैठो विश्राम, माई मैं धन पायो हर नाम, अब मेरे को नामी मिल गया है, ब्रह्म मिल गया है, जिसका मैं नाम पहले चिंतन करता था। उस नाम और नामी का अभेद होता है, नामी और नाम दोनों अलग नहीं होते हैं कभी भी, दोनों अभेद होते हैं। नाम से केवल नाम नहीं, नामी लेना है, नाम वाला। तो अब मेरे को क्या हुआ? जो मेरा स्वरूप था उसकी प्राप्ति हो गई। जब तक नहीं थी तब मेरा मन दौड़ता था, मन मेरो धावन ते छूटे, अब नहीं दौड़ता है, कर बैठो विश्राम। तो विश्राम कहाँ किया? स्वरूप में, और कहीं तो विश्राम नहीं ना मिल सकता। और तो आपका मन विश्राम करता है तो क्षणक मात्र के लिए करता, फिर दौड़ जाता है। अब इस प्रकार का विश्राम मिला है, अब धावन ते छूटे हो, अब नहीं दौड़ता है। मान माई मैं धन पायो हर नाम, मान मेरो धावन ते छूटे हो, कर बैठो विश्राम, अब विश्रांति हो गई, शांति प्राप्त हो गई। तो इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं कि मन को सावधान करके कि तुम मेरे वश में रहो, मेरे अनुसार चलो, मैं आपको वैकुंठ यानी अपने स्वरूप की तरफ ले जाऊंगा। मन को क्या चाहिए? मन को विश्राम चाहिए कि नहीं? मन विश्राम चाहता है, टिकना चाहता है लेकिन कहाँ उसकी दौड़ है, स्वरूप की तरफ दौड़ है। सुख चाहता है ना, तो सुख कौन सा चाहता है? अविनाशी सुख चाहता है, जिसका कभी नाश ना हो। तो कहते हैं कबीर जी महाराज कि यदि तो तुम प्रेम से मान जाते हो तब तो ठीक है, तो यदि प्रेम से नहीं मानते हिचह, यदि कहते अड़ोगे आगे से तो प्रेम के चाप कुमार मन रूपी घोड़े को, बाकी तो सब बता दिया लेकिन जब मन रूपी घोड़ा बिगड़ जाए, ना माने, लगाम खींचने पर भी ना माने, तो फिर क्या करेंगे? विवेक और वैराग्य रूपी लगाम से खींच तो रहे हैं तब भी नहीं मानता, तो फिर कहते हैं चाबुक होता है। जब प्रेम से नहीं मानता घोड़ा तो फिर चाबुक मारना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो चाबुक कौन सा है? मन रूपी घोड़े को कहते हैं कि यदि तुम बैकुंठ यानी सत्संग रूपी बैकुंठ में नहीं आओगी, महापुरुषों का जहाँ निवास है बैकुंठ नगर, जहाँ संतवाता साध संत बैकुंठ है आहे, यदि इस प्रकार के बैकुंठ में जाने के लिए नहीं मानोगे यानी अभ्यास में नहीं लगोगे तो प्रेम के चाबुक मारो, फिर मैं आपको क्या करूँगा? प्रेम रूपी चाबुक से डांटूँगा। क्योंकि जब प्रेम रूपी चाबुक लगाएंगे तो फिर मन विवेक और वैराग रूपी लगामों के साथ यदि नाम ही माने तो प्रेम रूपी चाबुक से फिर बंध जाएगा। वो ऐसा चाबुक है यानी प्रेम रूपी चाबुक जब लगाएंगे तो प्रेम जब उसको हो जाता है ना, प्रीति हो जाती है परमात्मा के साथ, तो फिर कहीं छोड़ता नहीं है, फिर बस में आ जाता है। तो कबीर जी महाराज जी कहते हैं कि चल रे बैकुंठ तुझ है लैचारो, हिच है ता प्रेम के चाबुक मारो। तो प्रेम रूपी चाबुक से, विवेक वैराग रूपी लगाम से उस मन रूपी घोड़े को वश में करके तो विचार करना चाहिए, तब हम जो हमारी मुक्ति रूपी बैकुंठ हमारी मंजिल है उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय।